ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज का श्लोक भी लंबा श्लोक है तो मैं श्लोक पढ़ूंगा उसके बाद में आप लोग एक एक सबका अनुवाद करेंगे मेरे साथ में। अथ पुनन्यस्तम स्वविधिना विश्चायतेना वासश्चादाय भूषणालेपास्र तिलकादिभिर् उपसकृतं भुक्तावन्तं धूपादीपामाल्य लाज किशलायंकुरा फलोपहारोपेत्या वैश्यस्य समस्ताया महता गीता स्तुति मृदंग पनवा गोसेन च पुरुषा पासुंभद्र काल्या पुरात उपवेशयाम अहु। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे भी। अथ तदंतर प्रणय डाकू के समस्त अनुचरों ने तमु उसके झट व्रत स्वविधिना अपने विधि विधाने विधानों के अनुसार अभिशिच्य नहलाकर अहतेन नये वाससा वस्त्र से अच्छा ढककर भूषण घने आलेप चंदन से लेपकर स्रकु पुष्पमाला तिलक आदि भी तिलक आदि से अपकृतम पूर्णतया सजाकर भक्तवंतम भोजन कराकर धूप सुगंधित दिव्य दीप दीपक माल्य माला लाज लावा किसलय अस्तूर नये पथे तथा अंकुर फल फल उपहार अन्य सामग्री उपेतया पूर्णतया सजित वैशेष संस्थाया बलि के लिए पूरी तैयारी महता अत्यधिक गीत स्तुति गाना तथा प्रार्थना करना मधुंग मृदंग पणव तुरही की दोषण ध्वनि से च भी पुरुष पुषुष पशु नर पशु को भद्रकाल्य देवी काली के पुरात ठीक सामने उपवेशायम बैठा दिया। अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इसके पश्चात चारों चोरों ने नर पशु बलि की काल्पनिक पद्धति के अनुसार झट भरत को नहलाया, नए वस्त्र पहनाया, पशु के अनुकूल आभूषणों से अलंकृत किया, उसके शरीर पर सुगंधी लेप किया तथा तिलक चंदन एवं हार से सुसज्जित किया। उसे अच्छी तरह भोजन कराने के बाद वे उसे देवी काली के समक्ष ले आए और देवी को धूप दीप माला खिल पत्ते अंकुर फल तथा फूल की भेंट चढ़ाई। इस प्रकार उन्होंने नर पशु का वध करने के पूर्वगीत स्तुति द्वारा एवं मृदंग तथा तुरही आदि बजाकर देवी की पूजा की। इसके पश्चात जट भरत को मूर्ति के समक्ष बैठा दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में स्वाधीना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार कोई भी कृत्य विधि विधानों के अनुसार किया जाता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि चोरों तथा उच्छकों ने नर पशु को मारने की अपनी विधि निकाली थी। तामसी शास्त्रों में देवी काली के समक्ष बकरे या भैंस की बलि दे का विधान है, किंतु उसमें मनुष्य की बलि का चाहे वह कितना ही मूर्ख क्यों न हो कोई उल्लेख नहीं है। यह विधान डाकुओं द्वारा स्वयं कल्पित किया गया था, इसलिए स्वस्विधिना शब्द प्रत्युत हुआ है। आज भी अनेक यज्ञ वैदिक शास्त्रों का उल्लेख किए बिना किए जाते हैं। उदाहरण था, हाल ही में कलकत्ता में एक बुचड़ खाने में का विज्ञापन देवी काली के मंदिर के रूप में किया गया। मांस खाने वाले लोग मूर्खता से ऐसी दुकानों से यह सोचकर मांस खरीदते हैं कि यह सामान्य मांस से भिन्न है और देवी काली का प्रसाद है। कितनी मूर्खताएं हैं। देवी काली के समक्ष बकरे या इसी प्रकार के पशु की बलि का उल्लेख शास्त्रों में इस दृष्टि में दृष्टि से हुआ है कि लोग बुचड़ खानों से मांस न खरीदें और इस प्रकार पशुओं के वध के लिए उत्तरदायी न हो। बद्ध जीवों में मांस खाने तथा संभोग करने की सहज पूर्वति होती है। कलक फलक शास्त्र उन्हें कुछ छूटे देते हैं। वास्तव में शास्त्रों का उपदेश यही ऐसी जघन्य प्रवृत्तियों को रोकना है, किंतु साथ ही वे उनके लिए कुछ विधि विधान भी प्रदान करते हैं, जिससे मांसाहारी तथा यौनाचारी क्रमश सुधर जाए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी प्रश्चता देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये जो डाकू लोग अपना कार्य करने जाते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये कोई शास्त्र के अनुसार नहीं है, शास्त्रों में नहीं लिखा है कि इस तरह से मनुष्य की बलि दी जाए। इसको बोलते अविधि पूर्वकम, ये विधि पूर्वक नहीं है। हमारी जो विधियाँ होती है ना, जैसे हमारे पुजारी लोग भगवान की सेवा करते हैं, सुबेरे सुबेरे मंगल आरती का भोग लगाते हैं, उसके पहले भगवान को जगाना, ये सब विधि पूर्वक है। लेकिन इसको प्रभुपाद जी बोलते हैं ये है अविधि पूर्वक। कोई भी कार्य जो हम लोग करने जाते हैं जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, गुरु के आदेश के अनुसार नहीं है, तो उसको अविधि पूर्वक कहते हैं। इसलिए हमें कोई भी जो कार्य करते हैं उसको सोच समझ के करना चाहिए। जैसे यहां बताया गया है कि एक बुचरखाना की दुकान खोली गई और लोग वहां जाकर सोते हैं काले के नाम में, के ये भी प्रसाद है। अगर इसको आगे बढ़ने देंगे तो कल मनुष्य का भी ऐसे हत्या करेंगे, बोलेंगे ये भी काली का प्रसाद है। काली माता क्यों प्रकट हुई, सोचने की बात है, समझने की बात है। हाँ, हम सब समझते कि जट भरत पहले चक्रवर्ती राजा थे, बहुत बहुत उत्तम आत्मा थे, बहुत बड़े भक्त थे, उसको तो बचाना ही बचाना था, लेकिन उसके पीछे लक्ष्य किया था। ये तो एक भगवान की एक लीला होती है भक्तों के द्वारा। अगर उस वक्त जट भरत को माता ने उसकी बलि चलाने दी थी तो आज फिर ये कार्यक्रम बहुत आगे बढ़ता कि ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों की बलि चढ़ाई जाए। दुनिया भर में वाद विवाद तो होता है और दुनिया भर में उच्च नीच की बात भी होती है। जैसे ब्रिटिश वाले यहाँ आकर राज कर गए, मोगल आकर राज कर गए, तो जो भी राज करता वही सोचता है ना कि मैं बड़ा हूं, बाकी सब लोग छोटे हैं। डाकू भी तो ये सोचते थे ना कि अभी इसकी बड़ी चलानी है। अब कब से इनकी ये परंपरा चली आई तो वो लोग ही जाने, लेकिन ये परंपरा थी उनकी। ऐसा नहीं है कि ये बलि का कार्य सिर्फ काली मंदिर में या तो कलकत्ता में होता है, देश विदेश में भी ऐसे होता है, हमने देखा है। और जब पकड़ा जाते हैं तो सारी की सारी संस्था को फिर सजा मिलती है। एक मिडवेस्ट में अमेरिका में ऐसी संस्था है कि जहां औरतों की बलि चढ़ाई जाती है, प्राइवेट ग्रुप होता है। जैसे ये लोग आतंकवादी होते हैं, उनको आतंकवादी कैसे बनाया जाता है, बचपन से 5 साल की उम्र से उनको, उनकी बार बार एक ही बात सुनाई जाती है कि तुम जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो सब राक्षस लोग हैं और दानव है, उनकी हत्या कर देनी चाहिए। और बचपन से उनको सिखाते हैं कैसे मानने का है। छोटे छोटे पुतले बनाए जाते हैं मनुष्यों के, एक साइड में रखते हैं कि ये सब भगवान के उनके हिसाब से भक्त है, दूसरे साइड में उनके पुतले लग जाते हैं और पुतले के अंदर क्या करते हैं, और जो पशुओं की हत्या होती है उनका खून अंदर डाल देते हैं कि बचपन से उनके धमाके उतर जाए कि ठीक है किसी को मारना और उनका खून बहते हुए देखना नेचुरल बात है, कुदरत बात है। तो वैसे ही ये जो संस्था है, ग्रुप है, उनमें यही होता है कि छोटी छोटी जो बालिका जो बहुत सुंदर होती है उनको ही बचपन से वो लोग सिलेक्ट कर देते हैं कि ये बालिका जब बड़ी होएगी तो उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। तो हम लोग समझते हैं कि शायद ये अफ्रीका में होता है या तो इंडिया की कोई गांव में होता है, नहीं ऐसे होता है विदेश में। फिर वहां जब पकड़ा जाते हैं तो सबको फिर बड़ी चलानी पड़ती है, जेल में जाना पड़ता है। और ऐसे जब बालिका जब 16-18 साल की होती है उनकी जब बलि चलाते हैं तो उस वक्त उसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया होता कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि मेरी बलि चढ़ाइए। यहाँ भी ये समझा सिखाता ना कि जैसे अगर काली माता को बलि चढ़ती है, जब चढ़ती थी मनुष्य की, तो उनको समझाया जाता, या तो भय से वो मान जाते या तो फिर वैसे ही मान जाते कि चलो मरना तो है ही, तो काली के चरणों में जाकर मैं क्यों ना मरूं, तो उसके द्वारा मेरा भी कल्याण होएगा। अफ्रीका में भी वहां अलग तरह की बलि चढ़ती है, वहां गृहस्थों की बलि चढ़ती है। कैसे कोई सोचता है, सोच सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन ऐसे होता है अफ्रीका में। वहां कानून इतना नहीं पहुंचा हुआ है, वहां जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स होती है बहुत गहराई जंगलों में रहते हैं, वो लोग साल में एक बार ऐसे करते हैं। और जिस गांव में, अनेक गांव में ये चलता है, तो जिस गांव में जो बलि चढ़ने वाली है उनका जो चीफ होता है, जो उनका प्रधान होता है, वो डिसाइड करेंगे कि इस साल इस गृहस्थ को बलि चढ़ेगी और उनको एक साल तक उनका माइंड में समझाया जाता है, बार 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 दोहराया जाता है कि जब तक उनका टाइम आता है तो कंप्लीटली सरेंडर्ड हो जाते हैं कि ठीक है अभी हमारी बर्ली चढ़नी है, हमारी बर्ली चढ़ने से हमारा गांव का उद्धार होएगा और हमारा भी कल्याण होएगा। ये है अफ्रीका ज्ञान। तो जब मनुष्य को बार बार कुछ दोहराया जाता है तो मनुष्य विभिन्न होकर वो पिघल जाता है, या तो फंस जाता है या तो इन बातों में आ जाता है। जैसे यहाँ ये काली की दुकान में, काली के नाम में एक दुकान बनाएगी और वहाँ मांस प्रसाद के रूप में बांटा जा रहा है और सब बद्ध जीवात्मा बोलते हैं, बद्ध जीवात्मा सब वहाँ जाकर प्रसाद के रूप में सोते कि ये प्रसाद है ना। कितनी अज्ञानता है, अज्ञानता नहीं है तो क्या है, मूर्खता है ना। मूर्खता कहाँ से आती है, अज्ञानता से आती है। ज्ञान होता है तो ऐसी मूर्खता मनुष्य नहीं करता है। ज्ञान होता है तो मनुष्य उसको अपनाएगा भी और सही रास्ते भी चलेगा, और कुछ लोग गलत जा रहे तो उनको भी सही रास्ते पर चढ़ाएंगे। इंग्लैंड में भी ऐसे होता है और आप हैरान होंगे कि जैसे आज से कुछ 40-50 साल पहले ये ड्रैकुला की जो मूवी निकली थी, तो जो व्यक्ति वो बार बार अनेक अनेक मूवी में ड्रैकुला का वो रोल प्ले करता था ना, तो वो ड्रैकुला क्या करता है कि वो जाकर लोगों को गला काटता है, उनका खून चूसता है। तो उनकी बुद्धि पर इतना मतलब गलत परिवर्तन हो गया कि असली जीवन में भी उसने लोगों को गला काटना शुरू कर दिया और मेंटली इतना पागल हो गया कि उसको लगता था कि मैं असल में ड्रैकुला आया। ड्रैकुला जैसी तो कोई चीज होती नहीं, कोई ऐसा मनुष्य होता नहीं। हाँ, शेर आकर आपका गला काट सकता है। तो ये है इन मनुष्य की ऐसी स्थिति, क्योंकि असली ज्ञान नहीं होता। जो भी गलत ज्ञान लेकर फिर मनुष्य आगे बढ़ने की कोशिश करता है, खुद उल्लू बनता है, दुनिया को उल्लू बनाता है। इतना बड़ा ड्रैकुला हो गया, फिर गायब हो गया। और जो नौजवान लोग, बच्चे लोग जैसे मूवी देखते थे तो उनको रात, उनके लिए रात को सोना मुश्किल हो जाता, फिर भी ये लोग देखते हैं। जो गलत चीज है, गलत रास्ता है, उसके ऊपर जाने के लिए मनुष्य एकदम से चल पड़ता है। सोचता है इसमें आनंद है, उसमें आनंद है, उसमें आनंद है ना। ऐसे जन्म जन्मांतर का चक्कर हम लोग घूमते रहते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म से क्या मिलता है। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं। ये जन्म मरण के चक्कर से बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि पुनः पुनः चरवित चर वण नानाम, कि बार बार उसी चीज को चबाना, इसी चीज को चबाना। क्या चबा रहे हैं हम, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं ना, करते क्या वही करते हैं, खाते पीते सोते पैदा करते हैं, भय में रहते हैं, मृत्यु आती है, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले गए। चबाने की बराबरी हो गया ना, एक जीवन से दूसरा जन्म, दूसरा जन्म से तीसरा जन्म। और जब मनुष्य का जन्म आता है हमारे लिए, प्रभुपाद जी की जैसे कोई शक्तिवेश अवतार आकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो उसी रास्ते पर चलते चलते भी हम कभी कभी फिसल जाते हैं। तो ये क्या है, चबाना क्या है। प्रभुपाद जी बहुत एक सरल एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि गन्ना होता है तो गन्ने का जो रस होता है, तो आप गन्ना के रस्ते में जाकर उठा के काट लोगे और खाना शुरू करेंगे तो क्या क्या मिलेगा क्या आपको। अगर जहां मशीन वाला खड़ा है वहां से गन्ने का जूस निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको। अंत में ही तो सेम ही चीज ने, मीठा स्वाद, मीठा जूस, हो सकता है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट जो भी है, उससे आपका स्वास्थ्य का कल्याण होता है। लेकिन प्रभुपाद का कहना यह है कि गन्ने का जूस आप गन्ने से हाथ से निकालो, मशीन से निकालो, या तो और कोई तरीका से निकालो, उसमें निकलना तो जूस ही है। अगर हम ये समझे कि उसके अंदर से हीरे मोती निकलेंगे तो फिर हमारी गलत फहमी है। तो अगर हमें गन्ने का जूस पीना है तो पी सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण इसलिए देते कि इसी सरलता से हम समझ पाए कि जीवन मरण का चक्र भी ऐसा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कब तक हम लोग करते रहेंगे, कब हम इससे छुटकारा पाएंगे। तो ये समझना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। भगवान क्या कहते हैं भागवत गीता में, आप लोगों ने शायद सुना है कि एक भागवत गीता की बहुत बड़ी कॉपी बन रही है। एक भागवत गीता ऐसी बनाई जा रही है कि जो गिनीस बुक ऑफ रिकॉर्ड में रिकॉर्ड की जाएगी और सबसे बड़ी पुस्तक कहलाई जाएगी। उसकी साइज होगी तकरीबन 3 मीटर, 2.8 मीटर्स बाय 2 मीटर्स, और इस साल में गीता जयंती में उनका उद्घाटन होएगा। और ये गीता का वजन होएगा 200 किलोग्राम। और ये पुस्तक ऐसे बनाई जाएगी, ये तो हमारे हाथ में अगर गलती से ऐसे हो गया तो पत्ता फट जाएगा, लेकिन वो पत्ता ऐसे बनाया गया है कि चाहे कुछ भी करो पत्ता फटेगा नहीं, उलझेगा नहीं। तो ये है, ये विचारधारा आई है हमारा जीबीसी है जो मधु सेवता प्रभु उनके द्वारा, और उनमें पूर्ण रूप से सहयोग देने वाले हमारे जीबीसी और हमारे गुरुजन गोपाल कृष्ण महाराज। तो उसका उद्घाटन हो जाएगा, पहले कुरुक्षेत्र में जाएगी, फिर दिल्ली आएगी, दिल्ली से फिर सारी पृथ्वी का गीता का भ्रमण होएगा और उनका एग्जीबिशन होएगा। महत्वपूर्ण बात है, और एग्जीबिशन का मतलब देश विदेश के लोग देखने आएंगे कि सबसे बड़ी पुस्तक दुनिया की भागवत गीता के नाम में, भागवत गीता एज इट यथारूप में, और लोग इनका दर्शन करेंगे। ऐसे कहते हैं ना, भगवान और भगवान के ग्रंथों में कोई अंतर नहीं होता है। तो भगवान की जो पुस्तक का हम अगर दर्शन करते हैं तो भगवान का दर्शन के बराबर है। तो देश विदेश में लोग भगवान के दर्शन करने आएंगे। कन्हैया के रूप में वो लोग सीधे नहीं समझते, तो भगवान भी बड़े होशियार है। आप लोग पुस्तकों में मानते, ठीक है मैं पुस्तक बन के आता हूं आपके देश में। तो ये भागवत गीता इतनी महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सारा हमारे लिए ज्ञान दिया गया है। भगवान बोलते हैं कि चार जगह पर मैं विराजमान रहता हूं, उसमें से एक ही जहां ग्रंथ के रूप में होते हैं, गीता या तो श्रीमद् भागवत भागवत के रूप में है। जहां भी जिसके भी घर में अगर भागवत गीता है तो मंदिर के बराबर गिना जाता है, कहलाया जाता है, क्योंकि भागवत गीता भी भगवान है। इसलिए भागवत गीता को तो हमें साथ में रखना चाहिए, हमारा सखा बना के रखो, दोस्त बना के रखो। तो इस गीता का थोड़ा हम लोग अभ्यास करेंगे, जो भगवान क्या बोलते हैं, देवी देवताओं के बारे में, काली को कैसे हमने समझना चाहिए। ऐसी श्रद्धा से संभवित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यही है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदान होते हैं। हम देवी देवताओं के पीछे भागेंगे, कितने 33 करोड़ बोलते हैं ना, आपके पास कितना टाइम है समझो, 33 करोड़ मतलब इतने टाइम है जीवन का सबके पास जाने के लिए। इससे बेटर है कि हम सीधे डायरेक्टली भगवान के पास जाए। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य से एक श्लोक एक फ्रेज पढ़ो, परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा सम्मान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। कहने का मतलब ये है प्रभुपाद जी का यहाँ कि देखो, अगर हम देवी देवताओं का पूजा करते हैं तो उनको भी जन्म लेना पड़ता है, उनको भी बार बार आना पड़ता है ना? तो अगर हमें भी बार बार आना पड़ता है तो इसी हिसाब से वो भौतिक बन जाता है। लेकिन हम जब भगवान की भक्ति डायरेक्टली करते हैं, भगवान की पूजन डायरेक्टली करते हैं, तो आध्यात्मिक बन जाती है। भगवान बोलते मन मना भव मद भक्तो, तो भगवान की जो हम पूजा करते हैं तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। अल्प बुद्धि वाले, ये दूसरा श्लोक है, व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल समित तथा क्षणित होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंतंत मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। महत्वपूर्ण बात है। भगवान के धाम में हमें जाना है तो भगवान की भक्ति करना बहुत जरूरी है। अच्छा, काली माता कौन है, योग माया कौन है, उसको भी हमें समझना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हम काली के मंदिर के पास जाते हैं या तो काली की हम फोटो देखते हैं तो कभी कभी हमें भी गलतफहमी होती है, क्योंकि हमने वही सुना है कि काली के मंदिर में बलि का बकरा चलता है, बकरा का बलि चलती है। तो इसके हिसाब से हम यही सोचते कि ये गलत जगह है, गलत देवी है। लेकिन देवी कौन है उसको समझना भी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम समझेंगे, हमें सही ज्ञान होएंगे तो हम अपराध नहीं करेंगे। मनुष्य का स्वभाव है, सब हम लोगों का स्वभाव है कि कुछ जैसे भी हम कुछ देखते हैं तो उसके बारे कुछ ना कुछ हमारे हम लोग बोल जाते हैं ना? तो देवी देवताओं का सम्मान करने का है, अपमान नहीं करने का है। बोलो भी एक तरह से भक्त के रूप में भगवान की सेवा के लिए आते हैं, तो उसको समझने का बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहाँ दसवें स्कंद में बताया गया है, दस के स्कंद में दूसरा अध्याय में भगवान ने योग माया को आदेश दिया। हे समस्त जगत द्वारा पूज्य तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति कौन है? सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति है, तो भक्ति के लिए भी शक्ति दे सकती है, इसलिए हमें सम्मान करना है। तुम ब्रज जाओ, जहां उनके ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती है, उस सुंदर प्रदेश में जहां उनके गौवो निवास करती है। वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंदन महाराज के घर में रह रही है। वसुदेव की अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वही अजातवास कर रही है, कृपा करके वहां जाओ। भगवान बोलते योग माया का है। देवी के गर्भ में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई के रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। यह काली माता योग माया की शक्ति। ये कौन है? देखो, भगवान उनको आदेश देते हैं, उनको किसी सेवा दे रहे हैं, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। कृष्ण के तात्पर्य में एक लाइन जो प्रभुपाद जी बोलते, कृष्ण के प्रथम अंश बलदेव है जो शेष भी कहलाते हैं। भगवान का शेष अवतार सारे ब्रह्मांड को धारण करता है और इस अवतार की शाश्वत माता है माता रोहिणी। भगवान ने योग माया से कहा, चूंकि मैं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं, अतः शेष अवतार पहले ही वहां पहुंच चुका है और उन्होंने वहां मेरे रहने की पूरी व्यवस्था कर दी है। अब उन्हें अपनी माता रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करना चाहिए। भगवान की लीला अद्भुत है। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा और तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हर एक की भौतिक इच्छाएं पूरी करने में सर्वोपरि हो। भगवान कृष्ण ने माया देवी को यह कहकर आशीर्वाद दिया। भगवान उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग तुम्हें पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से पुकारेंगे, यथा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका माया नारायणी ईशानी शारदा तथा अंबिका। देवी के गर्भ में गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में भेजे जाने के कारण रोहिणी का पुत्र शंकरसन भी कहला गया। वह गोकुल के सारे निवासियों को प्रसन्न रखने की समक्ता होने के कारण राम कहला गया और अपनी प्रचुर शरीर की शक्ति के कारण बलभद्र कहला गया। भगवान से इस तरह आदेश पाकर योगमाया ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। देखो, भगवान का कभी आदेश आता है तो तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। जब गुरुजन हमारे गुरु हैं, हमें आदेश देते हैं तो उनका तुरंत स्वीकार करना चाहिए। यह है योग माया। ये 10 के स्कंद में दूसरे अध्याय में योग माया के बारे में, काली माता के बारे में समझाया गया। तो ये समझना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इसको समझकर हम लोग भी सही रास्ते पर चल सकते हैं। कभी भी देवी देवताओं को अपराध नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए और देखना चाहिए कि भगवान ने हर देवी देवताओं को क्या आदेश दिया है, वो लोग कितनी दृढ़ निष्ठा से उनका पालन कर रहे हैं। सूर्यदेव कभी बोलते हैं, कभी मैं थक गया हूँ, आज मैं आप लोगों को नहीं मिलूंगा, आज मैं सोऊंगा। चंद्रमा कभी बोलता है कि आप लोग अभी सारा दिन 12 घंटे तो आप लोगों ने तपस्या कर ली, और 12 घंटे कर लो क्योंकि मैं आज प्रकट नहीं हूंगा। वायु कभी बोलता है कि आप लोगों को हवा देकर मैं थक गया हूं, कितनी हवा दी मैंने आप लोगों को। ये है देवगण, सब ये सब अपना कार्य करते हैं किसके आदेश के अनुसार, कन्हैया के। तो हमें इनसे सीखना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते, कहीं भी जाओ, कुछ भी देखो, तो वहां देखो कि हमारे आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए कौन सी चीज अच्छी है, उसको पकड़ो अच्छी तरह से, उसको अपनाओ। माइक्रोफोन के बारे में बोलते हैं कि माइक्रोफोन कितना अच्छा है। माइक्रोफोन के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। अगर किसी जगह पर बहुत सारी गंध पड़ी है, लिख में बीच में कोई टच स्टोन है, हीरा मोती है, कोई ऐसी अच्छी चीज है, तो उसको पकड़ना चाहिए। गंदगी में लेटने का नहीं है। ज्यादा करके हम लोग भागते लेटते ही गंदगी में, जो अच्छी चीज है उसको पकड़ने से हम लोग डरते हैं। अच्छी चीज को पकड़ो, अच्छे रास्ते को पकड़ो। देखो, प्रभुपाद जी 40 रुपया लेकर गए और देश विदेश में प्रचार करके आए, कितने मंदिरों और संस्था का कितनी जगह पर स्थापना किया, 108 से ऊपर, आज 500 के ऊपर हो गए। हम लोग एक छोटा सा घर बनाने जाते या तो एक छोटा सा अपार्टमेंट बनाने जाते तो हमें 40 साल लग जाता है, 50 साल लग जाता है। चाबी तो मिल जाती है लेकिन हफ्ता तो भरना पड़ता है, 25 साल तक भरना पड़ता है, 50 साल तक भरना पड़ता है। कितनी तपस्या है, और देखो कितनी उम्र में प्रभुपाद जी ने कितनी तपस्या करके सारी पृथ्वी पर भ्रमण करके 14 बार कितनी जगह संस्थाओं का स्थापन किया। जो लोग पानी तो पीते ही नहीं थे, सिर्फ दारू पीते थे, उनके ऊपर परिवर्तन किए कर लिया। जो लोग 7 दिन में से कम 21 बार मांसाहारी थे, उनके ऊपर उन्होंने कृपा की और 21 बार को छोड़कर और 21 बार अभी आज प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो ये सब अच्छे उदाहरण है। कभी कभी हम हमारे देश में यहाँ भारत भूमि में जो लोग शाकाहारी, उनको बोलते हैं कि आपको चाय कॉफी कर छोड़नी पड़ेगी, तो बोलते अरे चाय 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 वगैरह तो जीवन नहीं चलता है भाई। तो ये एक तरह का अटैचमेंट है। हम सबके पास कोई ना कोई वीकनेस है, तो इस वीकनेस से हमें बाहर निकलना है। प्रभुपाद जी के चरणों में रहकर प्रभुपाद जी का आदेश का पालन करना है और भक्ति करना है, भक्तों के संग के द्वारा। कि संग में जो भक्ति होती है वो अकेले में नहीं हो सकती, क्योंकि हम लोग सनातन गोस्वामी नहीं है, रूपा गोस्वामी नहीं है, है ना, कि हम एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाएंगे और भगवान की भक्ति में लीनमय हो जाएंगे। इसलिए आमतौर से हम लोग जैसे जीवात्मा है, जिसको बद्ध जीवात्मा कहते हैं प्रभुपाद जी, सबको साथ में मिलकर भक्ति करनी है, संघ में भक्ति करनी है। संघ में भक्ति करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अविधि पूर्वकम से बचना है, विधियों का पालन करना है। जो चीज अविध है, प्रभुपाद जी ने कहीं अलग अलग भाव से, अलग अलग राग से, अलग अलग रूप से बताया है कि आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। जो करना है उसको अच्छी तरह से करो, सही भावना से करो, प्रेम पूर्वक करो, क्योंकि जो भी हम प्रभुपाद जी कहते हैं करेंगे और भगवान की खुशी के लिए है, गुरु और गौरंगा की खुशी के लिए है। गुरु और गौरंगा खुश होएंगे तो हम लोग कुदरती अपने आप खुश हो जाएंगे। देवी देवताओं को खुश करने जाएंगे तो उसमें बहुत ही तपस्या है, अगर गलती हो गई तो दंड भी पड़ेगा। जो शास्त्र का जो श्लोक मंथन करते हैं, अगर श्लोक में गलती हो गई है तो इंद्रासन के बदले निंद्रासन मिल जाएगा। मिला था ना कुंभकर्ण को, इतनी तपस्या करने के बाद क्या मिला उनको? जो मिलता, जो चाहता मिला, जो चाहते थे मिला, नहीं मिला ने। लेकिन ध्रुव महाराज को देखो, उन्होंने सही उन्होंने जो भगवान की पाने के लिए भक्ति की तो उनको क्या मिला? प्रहलाद महाराज ने इतनी तपस्या की तो उनको क्या मिला? नारद मुनि ने जाने अनजाने में भी तपस्या की, साधुओं की सेवा की, तो उनको देखो कितना बड़ा आशीर्वाद मिला भगवान का, है ना। इसलिए हर रूप से हर शक्तियां जो हमारी उनको इस भक्ति मार्ग में लगाई। ये एक ही रास्ता है, सरल रास्ता है, इसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। और जब आपको आनंद महसूस होएगा तो उसमें कोई रुकावट भी नहीं है। तरह तरह की जो रुकावट आती है आपको रोक नहीं पाएगी, क्योंकि भगवान आपके साथ में है, गुरु के आशीर्वाद आपके साथ में है। तो गुरु के आशीर्वाद और भगवान की सेवा में रहकर हमें आगे बढ़ना है। किसी का कोई सवाल या तो किसी का कोई कॉमेंट? सब लोग भक्ति करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, कुछ बोले माइक्रोफोन। चालीस रुपये प्रभु, सवाल ये है कि प्रभुपाद जी 40 रुपये लेकर गए तो उस 40 रुपये का क्या किया? इतना तो मुझे मालूम कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया था। प्रभुपाद जी ने वो 40 रुपये वापस लेकर आए थे, उनके जेब में से कभी खर्चना नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी बस भक्ति थी, उनके गुरु के आशीर्वाद थे, भगवान उनके साथ में थे। भगवान ने तो उनको रास्ते में ही जो पानी के जहाज में जा रहे थे वहीं दर्शन दे दिया था कि जाओ फलीभूत होंगे तुम्हारे, तुम्हारी जो इच्छा है, तुम जो कार्य करने निकले हैं वो उसमें आप सफलता पाओगे। जब दूसरी बार भगवान प्रभुपाद जी को हृदय का जो द्वारा पड़ता है तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी जो भी इच्छा, आप चाहते हो वापस ले जाना तो भी मैं रेडी हूं, और अगर आप चाहते हो कि मेरे एक गुरु के खुशी के लिए आप मुझे वहां तक पहुंचाना चाहते हो और देश विदेश में भ्रमण करके हरि नाम का प्रचार करूं तो वो भी मैं करने के लिए तैयार हूं। कितनी उम्र में देखे, 70+, 35 नहीं थे, 21 नहीं थे, 16 नहीं थे, उन्होंने इतनी तपस्या की थी। इसलिए भगवान का आशीर्वाद सपने में देखते हुए राधा श्याम सुंदर आकर दर्शन देते हैं, सफलता पाओ। तथास्तु। भक्ति का ये फायदा है, भक्ति करने से हमारे लिए जो भी रुकावट आती है, चैलेंजेस आएगी। पांडवों को भी कई साल वन में जाना पड़ा था, लेकिन अंत में जीत उनकी हुई। भक्त की हमेशा जीत रहती है, और भक्त को हमेशा सबसे ज्यादा कष्ट भी उठाना पड़ता है, क्योंकि भगवान ने आपको चुना है, भगवान ने भक्तों को चुना है। कि भगवान जब भक्तों को कष्ट देता है तो सहनशीलता भी देता है, शक्ति भी देता है अब सहन करने की। हरिदास ठाकुर को कितने गांव में जाकर उन्होंने पिटाई की थी, चाबुक से मारा था, लेकिन वो लोग मार नहीं पाए, आमतौर से एक मनुष्य कोई एक ही जगह पर आधा घंटे ऐसे मारेंगे तो वो देह छोड़ देगा। चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ देने के लिए आए थे, हमेशा उनके हाथ ऊंचे ही दिखते। कभी आप देखते हो चैतन्य महाप्रभु के हाथ ऐसे है या तो ऐसे पीछे छुपा के रखे कि मैं नहीं दूंगा आपको आशीर्वाद। तो चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद लेके आगे बढ़िए, सबको प्रचार करिए, खूब हरि नाम का कीर्तन करिए, खूब प्रचार करिए, खूब पुस्तक का वितरण करिए। जितना ज्यादा आप इस भक्ति के मार्ग में आगे चलोगे इतना ज्यादा आनंद महसूस करोगे। आपका सबका धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की।